नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी करेंगे अनावरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मृत व्यक्तियों के 2 करोड़ से अधिक आधार नंबरों को कर दिया है निष्क्रिय। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा संपन्न। हांगकांग की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग से मृतकों की संख्या बढ़कर 44 और भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल की। अहमदाबाद रहेगा आयोजन स्थल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वो स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण करेंगे। इस रॉकेट से उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित भी किया जा सकता है। इस अत्याधुनिक परिसर में लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा, जहां बहु प्रक्षेपण यानों के डिजाइन, उनके विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाया जा सकेगा। स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन चांदना और भरत ढाका इसके संस्थापक उद्यमी हैं। नवंबर 2022 में स्काईरूट ने अपने सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण किया था, जिससे वो अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। 2 दिन के इस कार्यक्रम को 2047 तक विकसित भारत के लिए रक्षा सुधारों, तकनीकी परिवर्तन, नागरिक सैन्य एकीकरण और भारत की उभरती सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। इस वर्ष आयोजन का विषय है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज भुवनेश्वर जाएंगी। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति कल लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी वैश्विक एकता और विश्वास के लिए ध्यान समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल ही लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समापन समारोह में भी शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। अपनी तरह की इस पहली योजना का उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मीट्रिक टन एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का विनिर्माण करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे मजबूत किस्म के परमानेंट मैग्नेट में से एक हैं।
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं और इसके साथ 3 और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन है, दूसरा द्वारका जी से कनालोस की डबलिंग का रेलवे लाइन का, और चौथा है बदलापुर से करजत 3rd और 4th रेलवे लाइन का।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार आंकड़ों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि UIDAI ने ये डेटा भारत के महापंजीकीय कार्यालय तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी आधार नंबर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर यह आवश्यक है कि उसका आधार नंबर हटा दिया जाए। UIDAI ने कहा है कि वे मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट माई आधार पोर्टल पर अवश्य सूचित करें। प्राधिकरण ने इस वर्ष की शुरुआत में माई आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मौत की रिपोर्टिंग नाम की सुविधा शुरू की थी। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफ्री सजा मसोइद्दीन के साथ आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों की समीक्षा के अलावा बहुपक्षीय मुद्दों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए नई संभावनाओं पर भी बातचीत की जाएगी। इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का आज समापन हो जाएगा। इस महीने की 14 तारीख से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए 14 दिन के विशाल वैश्विक व्यापार मेले में भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेले ने ग्रामीण महिलाओं को अपनी कला, कारीगरी और हस्तनिर्मित सपनों को दुनिया के सामने साकार करने का मंच प्रदान किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में गुजरात की गरवा निर्मला ने बिक्री में हुई वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
मैं भुज कच्छ गुजरात से आई हुई हूँ और मैंने अपने मॉडल का जो कपड़ा है वो यहाँ बेचने के लिए आई हूँ। इसमें बहुत सारा प्रॉफिट है, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम महिलाओं को कमाने का तक देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एट 2047 विजन से प्रेरित और एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विरासत की एक विस्तृत यात्रा को प्रस्तुत करता है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण में आज कई प्रमुख गतिविधियां आयोजित होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज के प्रमुख आकर्षणों में फिल्म अभिनेता आमिर खान की मास्टर क्लास भी है।
इफ़ी में आज सुबह के समय कला अकादमी में फिल्म निर्माण की रचनात्मक, आलोचनात्मक और तकनीकी आयामों पर गहन तथा व्यापक चर्चा होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाली फिल्मों को केंद्र में रखते हुए नए फिल्मकारों की वास्तविक भूमिका पर विशेष बातचीत की जाएगी। इसके बाद आज दोपहर बहुप्रसिद्ध फिल्म शोले के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में जाने माने फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक रमेश सिप्पी शामिल होंगे। प्रसिद्ध अभिनेता नागार्जुन भी आज एक मास्टर क्लास लेंगे, जिसमें वे 1989 की फिल्म शिवा के 4K फॉर्मेट में रूपांतरित करने के बाद फिर से दर्शकों के सामने लाने पर बातचीत करेंगे। शाम के समय मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से प्रसिद्ध आमिर खान कला अकादमी में दर्शकों के सामने होंगे, जिसमें वे सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली फिल्मों पर दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके अलावा इफ्फी में आज रेड कार्पेट पर कई जाने माने फिल्मकारों का आना जाना होगा तो कई शानदार फिल्मों का प्रदर्शन भी निर्धारित है, जिनमें क्लाउडिया, गोवा मार्चेस ऑन, अ पोएट, शाम और गीतांजलि प्रमुख हैं। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष में कुल खरीफ अनाज उत्पादन 1,730.33 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला पूर्वानुमान जारी किया। GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में GST दर घटाने के बाद 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कैसे अगली पीढ़ी के GST सुधार असम की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और असम के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। नए कर ढांचे के तहत राज्य के पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्पादों पर जीएसटी कम कर दी गई है, जिससे असम के पर्यटन क्षेत्र को लाभ हुआ है। अब 7500 रुपए प्रति रात्रि तक के होटल के कमरे सिर्फ 5% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत हैं, जिससे असम पर्यटकों के लिए अधिक किफायती बन गया है। वहीं असम के चाय पत्ती उद्योग पर अब केवल 5% जीएसटी है। इसी प्रकार मूगा सिल्क, गमोसा सहित सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% हो गई है। इससे बुनकरों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। नीतिका गुप्ता के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हांगकांग के ताइपो जिले में एक आवासीय परिसर में एक इमारत में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। 700 लोगों को अस्थायी आश्रयों में पहुंचाया गया है, जबकि 279 लोग अब भी लापता हैं। भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में कल भारत के नाम पर मोहर लगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
हमारे लिए ये गेम्स भारत में आयोजित हो रही है, इसलिए मुझे विशेष गर्व भी है, खुशी भी है। मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है। पिछले एक दशक में देश के अलग अलग 18 से अधिक सिटी में 22 से अधिक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। देश बड़ी टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड कप लेवल की गेम्स कराने के लिए अपनी क्षमता को दर्शा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को मिलने पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि देश की सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना ने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरे का भी अनुमान है। इस बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद मुनीश। भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दूसरी बार मिलने का समाचार सभी दैनिक समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के अनुसार ये आयोजन विशेष होगा, चूंकि 2030 में राष्ट्रमंडल खेल अपने 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी इसलिए भी अहम है, चूंकि देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दौड़ में भी शामिल है। जनसत्ता ने समाचार को प्रकाशित करते हुए खबर के उपशीर्षक में लिखा है, वर्ष 2010 में दिल्ली में हुआ था आयोजन, इस बार अहमदाबाद में होंगे खेल। दैनिक भास्कर ने इस आयोजन से बुनियादी ढांचे को होने वाले फायदों का जिक्र करते हुए भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता का भी उल्लेख किया है। दैनिक जागरण सहित कई प्रमुख समाचार पत्रों ने रेयर अर्थ मैग्नेट के स्वदेशी उत्पादन की योजना को सुर्खियों में जगह दी है। पत्र के अनुसार फिलहाल देश को 5 से 6 हजार टन रेयर अर्थ मैग्नेट की सालाना जरूरत है। रेयर अर्थ समुद्र किनारे की रेत और पुराने पहाड़ों में पाया जाता है। हिंदुस्तान ने इस खबर को ऐतिहासिक बताते हुए शीर्षक दिया है, भारत दुर्लभ चुंबकों में आत्मनिर्भर होगा। पत्र बताता है कि दुर्लभ स्थायी चुंबक काफी अहम है और इनका उपयोग ई वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, रक्षा और एयरोस्पेस के अलावा मेडिकल उपकरणों के विनिर्माण में होता है। वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से ग्रैप 3 हटाए जाने के समाचार को भी कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। ये पाबंदियां हटाए जाने के बाद कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूल तथा वाहनों पर लगाई गई कई पाबंदियां अब नहीं रहेंगी।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी करेंगे अनावरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को दे दी है मंजूरी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो जाएगा संपन्न। और भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल कर ली है। अहमदाबाद रहेगा आयोजन स्थल। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।